नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है कि क्रोध हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। एक ऐसी फीलिंग है जो चाहते ना चाहते, जाने ना अनजाने हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम चाहते हुए भी क्रोध कर देते हैं और ना चाहते हुए भी हम क्रोध करते ही हैं। मनुष्य अक्सर कहता है कि मैं क्रोध नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने यह कह दिया। बड़ों की बात नहीं मानी जाए तो वह क्रोधित होते हैं, और छोटे बच्चों की इच्छाएं ना पूर्ण हो तो वह क्रोधित होते हैं। तो देखा जाए तो हर समस्या का आज की तिथि में जो समाधान है वह क्रोध ही है। तो क्या ऐसा सच है? क्या हर समस्या का समाधान क्रोध ही है, या क्रोध अपने आप में भी एक बहुत बड़ी समस्या है? कुछ ऐसे ही पहलुओं के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे अपने एपिसोड माइंड मैटर्स में, जिसका शीर्षक है क्रोध। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर गिरीश पटेल एक वर्ल्ड फेमस साइकोथेरेपिस्ट और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब ने एंगर और एंगर कंट्रोल के ऊपर पूरे विश्व में अनेकानेक लेक्चर्स दिए हैं, और लोगों को विभिन्न टेक्निक से, जिसमें मेडिटेशन वो स्पेशली सिखाते हैं, उसमें क्रोध के कारण और उसके निवारण के बारे में बताया है। तो आइए डॉक्टर गिरीश से ही पूछते हैं कि क्रोध के बारे में उनका क्या कहना। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू
डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि क्रोध जो है वह किस मायने में, किस तरह आप उसे देखते हैं? क्या क्रोध जो भारी रूप से देखा जाए वही क्रोध होता है, या किस तरह आप उसे डिफाइन करते हैं एक आम आदमी के लिए?
वास्तव में अगर सरल भाषा में हम देखें तो आमतौर पर हम यही समझते हैं कि जब आप कोई उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, जब आप आवाज को बढ़ाते हैं ना, इरेशनल हो जाते हैं, उसको हम क्रोध समझते हैं। पर वह तो एक क्रोध का मोटा रूप है। वास्तव में क्रोध बाह्य रूप है, या तो नहीं ग्रॉस रूप कहे। अगर सूक्ष्म रूप से क्रोध को समझना हो तो अंदर में भी जब आपको कोई नाराजगी होती है, कोई ऐसी बात होती है, आप समझते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ और मैं कुछ बोल नहीं पाया, वह भी वास्तव में एक प्रकार से क्रोध है। कोई छोटी सी भी एक इरिटेशन जैसी सिचुएशन हो जाए, भले आप कुछ बोलो नहीं, लेकिन अंदर में हो रहा है वह, तो वह भी वास्तव में एक प्रकार से देखो तो क्रोध है। तो सूक्ष्म पहलुओं को भी आप समझेंगे तो हर एक व्यक्ति काफी हद तक आज क्रोधित है, और उसकी इफेक्ट मोर और लेस सेम है। अगर बाह्य रूप से क्रोध करो या अंदर में ही आपको वह फीलिंग आए।
तो देखा जाए, आपने बताया कि एक तो बाहर से हम लड़ाई झगड़ा और क्रोध लोगों को देखते ही हैं, और एक अंदर से अगर मनुष्य परेशान है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, तो वो एक माइन्यूट, एक सूक्ष्म प्रकार का, जिसे कहें क्रोध रहता है, और वो मन से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, किसी बीमारी का भी रूप ले सकता है, या एक धीरे धीरे भरते हुए मटके की तरह है, जब बहुत ज्यादा भर जाए तो फूट पड़ता है। अक्सर भी जो क्रोध है इसका क्या परिणाम होता है, हमारे शरीर पर कुछ असर जरूर डालता होगा या हमारे मन की स्थिति पर, ऐसे क्या इसके डायमेंशन हैं जो ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं?
सबसे पहले तो माना गया है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि क्रोध वह चंद पलों के लिए पागलपन है। एंगर इज टेम्पररी इनसेनिटी, क्योंकि पागल व्यक्ति की हम अगर निशानी देखे तो यही होती कि वह तोड़ फोड़ करता है, या तो वह इलॉजिकल होता है, नहीं उल्टी सीधी बातें उसे समझ में आती है, वो जो वास्तविकता नहीं है। तो इसी क्रोध के समय भी हम देखते हैं कि व्यक्ति तोड़ फोड़ कर देता है, या तो कोई और गालियां दे देगा कि जो वास्तव में सत्य नहीं है, परंतु एक पागलपन व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो यह हानि है। दूसरी हानि है कि शरीर में सिंपैथेटिक अराउजल स्ट्रांगली होता है, और हमारे हार्ट के नजदीक, आप और भी अच्छा मेरे से भी समझेंगे कि हार्ट के नजदीक ये सेंटर है ये जो स्टिम्युलेट करता है हार्ट को प्रॉपरली, तो वो एक बार तो फोर्स में काम करता है जब गुस्सा आएगा तब, और फिर कई बार उसकी एक्टिविटी स्टॉप भी हो सकती है। तो इसीलिए कईयों को क्रोध के समय हार्ट अटैक्स भी आए हैं। सो दैट्स इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन योर हार्ट।
वो कहते हैं कि नाड़ियों को थोड़ा रोक देता है या संकीर्ण कर देता है, और ब्लॉकेज जो है प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो हार्ट अटैक हो सकता है।
दूसरा कि क्रोध के कारण हमारी इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होती है, क्योंकि जब गुस्सा व्यक्ति करता है तो काफी मात्रा में स्टीरॉयड हार्मोन्स निर्माण होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, कि इसके कारण जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत ही कम हो जाती है, जो भी डेंजरस है। हमारे सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कि जिसके कारण आपको सरदर्द होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली ब्रेन की भी जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है उसमें फोर्स से ब्लड पहुंचता है। दैट इज ऑल्सो अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंगर।
और अक्सर देखा गया है कि जो क्रोधी मनुष्य होते हैं वो पाचन शक्ति की बड़ी कंप्लेन करते हैं कि खाना ठीक से पचता नहीं या बार बार डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है,
क्योंकि जो उसके गैस्ट्रिक जूस है, डिफरेंट एंजाइम्स जो है कि जो जरूरी है हमें डाइजेशन के लिए, वो भी उस समय अचानक बंद हो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति को सही है डायरिया भी हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए, जैसे मनुष्य अगर क्रोध करता है तो क्रोध के बाद एक फीलिंग आती है, वो गिल्ट की आती है, पश्चाताप की आती है, और अक्सर देखा गया है कि अगर मनुष्य लगातार क्रोध करता रहे तो वो एक लेवल के डिप्रेशन में भी चला जाता है बहुत ज्यादा। तो कहां तक ये बात, आप तो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, आपने कितने ही हजारों मरीज देखे होंगे, आपका क्या कहना है?
बिल्कुल सही है कि कई गिल्ट फीलिंग करते हैं उसके बाद कि मैंने किया, गलत किया, परंतु एक बार हो गया फिर आप बस वो व्यक्ति रिपीट ही करेगा और उल्टा उसकी जो गिल्ट है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। और जब वह एंगर को फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो नो एंगर डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर सेल्फ इज डिप्रेशन अल्टीमेटली, और उसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है।
और देखा जाए डॉक्टर साहब, अगर हम चलें, अलग अलग परिस्थितियां आती है, क्रोध जब मनुष्य का एक अभिन्न अंग बन चुका है, हम देखें छोटी छोटी बातों पर मनुष्य प्रवोक हो जाता है, कुछ ना कुछ बोल बैठता है, तो टोटल अपने आपे से बाहर हो जाता है मनुष्य का अपने हर सेंसेस पर, तो ऐसा मनुष्य जो क्रोधी मनुष्य है, अपने कोई भी कार्य व्यवहार में कोई कार्य कर रहा होगा वो उसे परफेक्शन से या एक अच्छे लेवल ऑफ एक्सेलेंस से अचीव नहीं कर पाता, कार्य में करते हुए अपना दिमाग नहीं लगा पाता, उसका मन कहीं और होगा, या गाड़ी चलाते हुए कहीं एक्सीडेंट में कर देता है। अक्सर देखा गया है कि कई मनुष्य क्रोध में एक्सीडेंट कर देते हैं, बच्चे जो हैं एग्जाम्स में भी, बच्चों में भी अगर देखा जाए क्रोध आजकल बहुत ज्यादा पनप रहा है काफी, और ऐसे बच्चे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं होते और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं देते, आपका क्या कहना है?
एक साइड इफेक्ट, इनफैक्ट इट मे नॉट बी डायरेक्ट इफेक्ट, लेकिन क्रोध की जो आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट में वो कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी नहीं चलाएगा, या तो और सपोज एग्जाम में भी गया तो ठीक से सोच नहीं पाएगा, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं होगी, तो इसके कारण ऐसी ढेर सारी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आफ्टर इफेक्ट्स भी होती है।
तो इसका कारण क्या होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या ऐसा है कि जब मनुष्य के जीवन में या मन में क्रोध भरा होता है तो उसकी जो थिंकिंग फैकल्टी है, उसका जो सोचने का दायरा है या सोचना, बहुत संकीर्ण हो जाता है क्योंकि ओपननेस नहीं रहती। तो आप क्या कहते हैं इस पर?
वो क्लैरिटी से नहीं सोच पाता है ना, जैसे जिसको कहेंगे कि जैसे बादल छा जाते हैं, ऐसे उसकी चेतना के सामने बादल छा जाते हैं,
मतलब बादल एकदम घेर लेंगे और वो सोचते हुए भी, दिमाग होते हुए भी वो सोच नहीं पाएगा,
वो चाहते हुए भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर बैठेगा, इसीलिए कहा कि भी ये चंद पलों के लिए पागलपन है।
एक बहुत ही कॉमन प्रश्न देखा गया है, कई मनुष्यों को अगर क्रोध के बारे में बताया जाए तो उनकी विचारधारा ये कहती है कि कुछ क्रोध हमारे जीवन में जरूरी है। भाई ऐसा नहीं कि क्रोध के बिना जीवन, वो क्या जीवन हुआ, आप चिल्लाए नहीं, या कहीं ना कहीं वो कहते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं या डिफेंड करते हैं अपने क्रोध को, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या ये जरूरी है?
अधिकतर तो यह समझते हैं कि भी क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा,
काम नहीं चलेगा,
यही तो ये बात एक रीति से गलत है, जो कई बार थोड़ा सा साइंटिस्ट भी बताते हैं उसमें दो ही हुए। अगर आप अपनी बिहेवियर को देखो, उसको अगर स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जाए, तो एक कोने में तो है कि हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, वो दबाना तो बिल्कुल बुरा,
बिल्कुल
गलत। और आज कई लोग जो समझते हैं कि भावनाओं को दबा देने से कैंसर होता है, इसके कारण ये सोचते हैं कि भावनाओं को एक्सप्रेस करनी चाहिए और गुस्सा कर बैठते, लेकिन गुस्सा भी इक्वली हार्मफुल है। अगर सप्रेशन कैंसर क्रिएट करता है तो क्रोध हार्ट अटैक निर्माण करता है, बोथ आर इक्वली हार्मफुल डिजीज। तो लेकिन बेस्ट क्या है, जिसको कहते हैं कि मिडिल अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, और इसमें मिडिल अप्रोच क्या है कि एसर्टिव बिहेवियर, आप अपने जो फीलिंग्स है, जो कोई आपको बुरा लगा है और कोई बात है, उसको भले एक्सप्रेस करो परंतु मन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करो।
वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला मिडिल अप्रोच, तो एक आम व्यक्ति यही सोचेगा कि मिडिल अप्रोच मतलब थोड़ा क्रोध करें और थोड़ा वो रखें, तो आप क्या कहेंगे इसके?
वो मिडिल अप्रोच नहीं है,
कि अक्सर देखा गया तो बैलेंस
ऐसा समझिए, हाँ। कि भी थोड़ा क्रोध करना,
थोड़ा क्रोध कर लीजिए और थोड़ा वो कर,
लेकिन बिल्कुल वो एसर्टिव बिहेवियर में क्रोध नहीं है। क्रोधी जब आप होते हैं तब जैसे का इरेशनल हो जाते हैं, या तो सिंपल भाषा में अगर बताएं कि भी हिंदी में कि भी स्ट्रिक होना चाहिए लेकिन क्रोध करना बुरा है।
जी हाँ,
आप अपने आवाज को बढ़ाए बिगर, कुछ उल्टा सुल्टा बोले बिगर भी स्ट्रिक तो हो सकते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।
वही मैं आपसे पूछना था कि हाउ टू बी असर्टिव, आप कह रहे हैं कि इसको एग्जाम्पल्स देके अगर आप हमें क्लैरिफाई करें तो
देन इट विल बी मोर इजी। एक बार एक महिला टीवी देख रही थी, शाम का समय था, उनके पति घर आए और उन्होंने आके तुरंत ही चैनल को चेंज कर दी। तो उसको इतना गुस्सा आया कि करीब में ही सोनी का वॉकमैन पड़ा था तो उठा के पटक दिया, तो वॉकमैन टूट गया। बाद में उसे लगा कि अरे रे, तो मैंने बहुत बुरा किया। कई दिनों के बाद भी बोल रही थी कि वो सीरियल मिस हुई उसका मुझे गम नहीं है, परंतु वॉकमैन टूट गया। तो अभी इसमें असर्टिव बिहेवियर क्या होती, सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि भी हमारे विचार क्रोध निर्माण करते हैं, परिस्थिति नहीं करती। अगर तब वह यह सोचती कि मैं तो सारा दिन टीवी देख रही हूं, कभी मेरे पति आए बोले थोड़ा सा मैं उनको भी देखने दो, या तो अगर वो ये सोचती कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल चल रही थी तो फिर से भी असर्ट करती कि जरा रुको, हाँ 10 मिनट मुझे अब ये सीरियल को पूरी करने दो, तो पति मान जाते, चलो फिर से चैनल को चेंज कर दो, हाँ कोई वॉकमैन तोड़ने की जरूरत नहीं थी। या अगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हमको हमारी चॉइस की सीरियल देखनी है तो दूसरा भी एक टीवी ले लेते ना। तो इस प्रकार से परिस्थिति को असर्ट किया जा सकता है। दूसरा एक उदाहरण हम ले कि एक बार एक छोटा सा लड़का करीब 2.5-3 साल का घर में जा रहा था, तो उनके उसके फादर आए, उन्होंने 1000 रुपए की नोट वहां पर रख दी। तो बच्चा खेलता खेलता गया, वहां पर नोट से खेलने लगा, उसने फाड़ दी। तो पिता को इतना गुस्सा आया कि उसकी पिटाई कर दी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल हुआ 3000 रुपया। तो अब इसमें भी असर्टिव बिहेवियर क्या होती, पहले तो ये सोचते कि मेरी गलती है, जब छोटा सा बच्चा घर में है तो ऐसे 1000 रुपए के नोट है, हम खुली नहीं छोड़ सकते हैं, या तो चलो ये हो गया तो भी उसको आंख दिखाते, या यह सोचते कि भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर समझेगा, इस उम्र हाँ समझा सके तो भले उस उम्र में भी कुछ उसको समझाते। तो ऐसे हर बात में असर्टिव बिहेवियर जरूरी है।
और दूसरा, आप इस स्टोरी से ये भी देख सकते हैं कि कई बार क्रोध करते करते हम अपने सामने वाले मनुष्य को या बच्चे को भी कितना हानि पहुंचा सकते थे। कई बार मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है और शारीरिक रूप से भी उसकी पिटाई कर देते तो बहुत नुकसान हो जाता है उसको। तो मेंटली भी एक एग्नी कहेंगे, एक पेन होता है, और शारीरिक रूप से भी देखा जाए वह भी।
और भी एक अच्छा उदाहरण है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो महत्व आप देते हैं परिस्थिति को वो इम्पोर्टेंट है। लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउ मच इम्पोर्टेंस यू गिव। जैसे एक डॉक्टर थे तो उनकी सेक्रेटरी एक बार 25,000 रुपये लेके भाग गई, तो उस दिन उनको जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। यह सोचा कि मैं बच गया भाई, सारा तो उसी के पास कैश होता था, वो 2 लाख रुपये भी लेके चली जाती तो शायद मैं नहीं पकड़ पाता। और दूसरे दिन ही उनके घर में टेलीफोन को रिपेयर करने की आवश्यकता थी, तो वो लाइनमैन रिपेयर करने के लिए आया, तो लाइनमैन ने कहा कि भी 400 रुपये लगेंगे। तो वो उनके साथ बोलने लगा, अरे 400 तो बहुत होते हैं, ये तो 100 रुपये का भी काम नहीं है, इतना क्यों ले रहे हो। आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, उनके बूढ़े फादर आए, कह रहे दे देना इसको, क्यों इतनी माथा कुटी करता है। तो एकदम गुस्से में आ गए कि चुप बैठो तुम, क्यों ऐसा मुझे बीच में दखल दे रहे हो। तो गुस्सा करने लगे। तो इसमें भी क्या हुआ कि एक दिन पहले 25,000 का लॉस हुआ था, लेकिन तभी सोचा कि लॉस कम हुआ जी। लेकिन आज उनके एक तो ईगो को ठेस पहुंची कि भी फादर क्यों मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और दूसरा शायद यह सोचा कि इसको मैं कम कर सकता हूं, ये 400 रुपया मांगता है शायद 200 में काम हो जाएगा। तो इसके कारण जब फादर ने बीच में कहा तो डिस्टर्ब हो गया।
तो देखा जाए तो सिचुएशंस कैसी हैं, उस पर मनुष्य कैसे रिएक्ट करता है, और अपने ईगो को लेके, अपनी एस्टीम को लेके किस तरह मनुष्य चलता है, तो उस पर भी क्रोध का काफी निर्भर करता है। और अगर हर मनुष्य बड़ा बैलेंस होके हर सिचुएशन को जितनी इम्पोर्टेंस हो उतनी ही इम्पोर्टेंस देके उसे दे, या एक पॉजिटिव थिंकिंग रखे, तो क्रोध पे काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है।
तो इसमें सोचते ना, तब भी कहते कि डैडी प्लीज तुम रुको, हाँ 5 मिनट के बाद मैं बात करता हूँ, तो रुक जाते शायद, तब एसर्ट हो सकता है। या तो ये भी कह सकते भी मुझे निपटाने लो, तुम्हारा काम नहीं है, मैं इसको सेटल करूंगा। दैट वाज आल्सो असर्टिव बिहेवियर रादर देन उल्टा सीधा बोलना,
क्योंकि हर क्रोध के साथ शारीरिक और मानसिक प्रभाव तो जुड़े हुए हैं। ये तो आप खुद ही बता रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्रोधी मनुष्य ज्यादा नहीं जीता, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और कुछ पर्सनालिटीज भी होते हैं जिनके साथ ये
जुड़ा हुआ है।
क्रोध तो हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में, मानसिक या शारीरिक या बाह्य रूप में आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न जो उठता है वो है कि क्रोध के कारण क्या है। विभिन्न प्रकार के कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशंस होती होंगी, कुछ ऐसे कॉमन जो हम लोग ना समझें, कई लोग मनुष्य कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्रोध को एक रूप दे सकता है, तो ऐसे क्या कारण है इनके बारे में?
जो सबसे मेजर कारण है, जो आमतौर भी लोग समझते हैं, कहीं सेमिनार में भी अगर पूछो तो लोग स्वयं भी ये कहते हैं कि करीब एटलीस्ट 25% से 30% एंगर है कि जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है, जब आप चाहते हो वैसा नहीं होता है, तब व्यक्ति गुस्से में आ जाता है। लेकिन इससे कई सूक्ष्म कारण भी है। एक तो कारण यह है कि दूसरे को कंट्रोल करने के लिए कई लोग गुस्सा करते हैं, थोड़े समय में सीख जाते हैं कि जब मैं आवाज को बढ़ाता हूं, गुस्से में बोलता हूं, तो लोग मेरी बात को मान लेते हैं, तो ऐसा समझ करके भी वह गुस्सा करने लगता है, टू कंट्रोल अदर्स। और एक लोग बचपन से ही, कई बच्चों की इस प्रकार की एक मेंटालिटी बन जाती है जिसको कहते हैं कि भी मैं कहूं वैसे ही होना चाहिए, थिंक मस्ट गो माय वे।
तो और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो काफी इंपॉर्टेंस ले लेते हैं?
ये जो तीसरी बात है कि लोग समझते थिंक मस्ट गो माय वे, जिनकी भी ऐसी पर्सनालिटी, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चौथा कारण है कि कभी कहीं बार इनजस्टिस जब होता है तो तब भी व्यक्ति गुस्से में आ जाता है।
फिर देखा जाए तो इनजस्टिस अगर किसी के साथ हो रहा हो, आपके साथ या हमारे साथ हो रहा हो, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ रूप में तो एंगर आएगा ही आएगा।
लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब आप इनजस्टिस हो रहा है तो आप भले कैंपेन करें, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया, भले ऐसा आप कुछ करिए, लेकिन गुस्सा नहीं करिए, क्योंकि वो एक्शन रिजल्ट देगी, क्रोध रिजल्ट नहीं देगा।
तो उसमें हमें ये कहें कि हर मनुष्य जिसके साथ बुरा हो रहा हो वो सत्याग्रह करे या इस टाइप की कोई एक्टिविटी करे, उससे ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि वो अपना प्रोएक्टिव रिस्पांस रखे, उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस ले।
बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि ये नेचर का लॉ होता है कि अगर कहीं पे इनजस्टिस होता है तो उसको जस्टिफाई करना भगवान के हाथ में होता ही होता है।
बिल्कुल हाँ जी, नहीं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी प्रोएक्टिव वो कुछ एक्शन ले, भले अपनी फीलिंग्स बताए, परंतु गुस्सा ना करे,
ग्रोथ ना करे, क्योंकि क्रोध से सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा और उसी व्यक्ति को और हार्म
होगा। बिल्कुल हाँ। और एक जो कारण है, कुछ लोग झूठ सहन नहीं कर सकते
जी। बिल्कुल,
कि जब भी कोई भी कहीं कोई झूठ बोलता है तो तुरंत उसे गुस्सा आ जाता है। इसमें भी हमें यह सोचना चाहिए कि क्रोध करने से व्यक्ति सच नहीं बोलेगा, क्योंकि क्रोध वह डर निर्माण करता है और डर से वो ज्यादा झूठ बोलेगा। जैसे बच्चे ही है नहीं, अगर बच्चों को आप सिखाना चाहते कि आप सच बोलो, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़े फ्री होंगे और अपनी सच बात है वो आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए उससे इवन आप बच्चों को चाहते कि बच्चे सच बोले, तो आप खुद सच बोलो,
खुद सच बोलिए।
अगर आप झूठ बोलेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा।
बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, क्योंकि बच्चों में अक्सर देखा गया है कि क्रोध का निर्माण बहुत होने लग गया है, और क्रोध का कुछ रूप जो है वो डर के कारण भी आता है। क्योंकि अगर मनुष्य बच्चे जो है वो आते हैं, स्कूल का होमवर्क नहीं करा, छोटी छोटी बातों पे, उस पे माँ बाप जो है या कोई भी घर में है वो अपना आपा खो बैठते हैं और बच्चे डर जाते हैं और अक्सर और झूठ बोलते हैं, और झूठ से झूठ बोलते बोलते कई बार वो आदत का भी एक रूप ले लेता है। और कई बार हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होगी, उन पर भी बच्चे
झूठ बोलने लगते हैं। और भी कुछ सूक्ष्म कारण है। एक तो कई लोग अपनी गलती को छिपाने के लिए भी गुस्सा करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, आपने मुझे कोई काम दिया है कि मैं उसे कर नहीं पाया, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो अंतिम दिन मैं गुस्से में आ जाऊंगा, और फिर मेरे पास एक तैयार कारण है, क्योंकि आपने गुस्सा दिलाया तो मैं काम नहीं कर पाया,
काम नहीं कर पाया।
नो, सो एज एन एक्सक्यूज टू प्रोक्रेस्टिनेशन सम पीपल लूज टेम्पर। और कुछ ये भी देखा गया है कि जो लोग थोड़े बीमार है, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब शायद इतना गुस्सा नहीं करता, लेकिन अगर उसके वो बीमार हो गया, थोड़ी लंबा समय बीमारी चली, तो भी वो गुस्से में आता है।
बीमारी जनरली देखा गया कि इरिटेशन का रूप लेती है और वो अल्टीमेटली एक एंगर का रूप लेता
है, क्योंकि वो समझता है कि भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसे लगता है कि जैसे मैं वीक हूं, और गुस्सा करने से सोचता है कि मुझे जैसे कि अच्छा लग रहा है। तो दिस आर नो हिडन रीजंस। और एक बहुत सूक्ष्म कारण है, कई बार आपने भी ये देखा होगा कि जब दो लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते आपको लगे कि भी आपकी हार हो रही है, सामने वाला व्यक्ति की आर्ग्यूमेंट अच्छी है, वो जीत रहा है, तो उसी समय आप गुस्से में आ जाते हैं, ताकि आर्ग्यूमेंट वहीं खत्म हो जाए और आपको हार को स्वीकार नहीं करना पड़े। तो ऐसे कई सूक्ष्म कारण भी है कि जिसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और हमें एनालाइज करें कि सचमुच मुझे क्यों गुस्सा आता है। उसका कारण अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर निवारण भी सहज हो सकता है।
और डॉक्टर साहब, ये देखा जाए कि जो क्रोध है, आपने बताया कि इच्छा के विरुद्ध कार्य होना, और हर मनुष्य आजकल अपनी कुछ इच्छाओं से, अपने कुछ बिलीफ से बंधा हुआ है। जो मनुष्य सोचता है कि भाई व्यक्ति की ये जो मैं सोचता हूँ वही सही है, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ वही सही है, और अगर वो नहीं होता मेरे कार्य में जरा सा भी इधर से उधर हुआ, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और ये उसके एटीट्यूड में, उसके प्रोफेशनल वर्क में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में, सब जगह ये डिस्टॉर्शन लाता है काफी ज्यादा। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि फैमिलीज हमने देखा है क्रोध के कारण ही कई फैमिलीज डाइवोर्स के इंसिडेंट्स वगैरह इतने बढ़ गए हैं, तो काफी इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है।
इसमें करना तो हमें क्या चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं डिफरेंट हूं, मेरी पत्नी अलग है, बच्चे मेरे अलग है। जैसे कहते हैं हमारे सर का एक बाल भी उनके साथ मिलता नहीं है, तो जब इतने हम यूनिक हैं तो जरूर वो कभी ना कभी डिफरेंट वे में भी कुछ एक्टिविटी करेंगे। और ये भी अगर सोच लिया जाए कि ये सृष्टि तो एक सीरियल है, जैसे सीरियल में सभी एक्टर्स एक ही प्रकार से एक्टिंग करने लगे तो मजा आएगा ही नहीं,
बिल्कुल
इसमें अलग अलग चीजें चाहिए। तो ऐसे जीवन भी जब सीरियल है तो आपके सबॉर्डिनेट बच्चे अलग रीति से कार्य करें तो उल्टा आपको इंजॉय करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए
और अपना कार्य बड़ा परफेक्शन से करना चाहिए। हमें अपने क्रोध पे अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो अक्सर देखा गया कि सामने वाला मनुष्य भी धीरे धीरे शांत हो ही जाता है, और क्रोध पे अगर हम और क्रोधित होते हैं क्रोधी मनुष्य पे तो ये एक आपकी तरह है।
वास्तव में आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि अपने साथ बिल्कुल स्ट्रिक हो जाओ, जितना हो सके वो अपने आप के साथ स्ट्रिक रहो, डिसिप्लिन में रहो, परंतु औरों के साथ आप जितने हल्के हो सको कोशिश करो, औरों को जितनी लिबर्टी देंगे उतना बेस्ट
उतना बेस्ट रहेगा। डॉक्टर एक चीज और देखी गई है, अगर हम नोट करें कि क्रोधी जो मनुष्य होता है कभी कभी जब क्रोध कर रहा होता है तो जिस गुस्से की अग्नि में वो दूसरे मनुष्य को जलाना चाह रहा होता है उस अग्नि में वो खुद भी जल रहा होता है,
वास्तव में वही जल रहा है।
जो नुकसान वो दूसरे को पहुंचाता है तो उससे पहले तो वह नुकसान खुद ही भुगत रहा होता है।
औरों को शायद कम हानि होती
है, कम हानि हो लेकिन
अपने आप को जो हानि होती है वो और ही ज्यादा
होती है। इधर तक गर्मी पहुंचते पहुंचते हल्की हो जाती है लेकिन खुद तो लाल होकर बिल्कुल।
ये जो कहा कि थिंग मस्ट गो माई वे, उसमें भी हमको ये सोचना चाहिए कि जब मैं छोटा था तब माता पिता तो मुझे सब कुछ दिया करते थे, परंतु तो अभी मैं बड़ा हो गया हूं, जो मेरे आसपास में लोग हैं मेरे माता पिता जैसे नहीं है, उनका जो एटीट्यूड था मेरे प्रति वो मेरी पत्नी का नहीं होगा, मेरे बॉस का नहीं होगा, तो मैं चाहूं वैसे नहीं हो तो भी गुस्सा करने से फायदा नहीं है मुझे।
अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और देखी गई है, आजकल हम देख रहे हैं रोड रेज एक नामक एक नई एंटिटी आई है जिसके बारे में शायद आज से 10 साल पहले हमने सुना भी नहीं था, और एकदम एपिडेमिक का प्रपोर्शन ले लिया है। मनुष्य जरा सा गाड़ी चला रहा होगा, कोई ओवरटेक करेगा, कुछ भी, बस गाड़ी रोक के लड़ाई होती है, और कई इतना विकराल रूप ले लेते हैं कि एक दूसरे को मार के भी लोग चले जाते हैं। और आप ये देखिए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा विकराल रूप क्रोध ने ले लिया है।
एक्चुअली कारण तो क्या है, मैं समझता हूँ आज है ना लोग अंदर से गुस्सा भरा ही पड़ा है, सिर्फ ने उसको एक बाहर निकलने का बहाना चाहिए। तो जब भी रास्ते में ट्रैफिक रूल किसने कुछ कर दिया, कोई स्लो गाड़ी चला रहा है, कोई ने कोई गलती कर दी, तो बस वो गुस्सा बाहर उभर आता है। जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो नेचुरली सामने वाला भी गुस्सा करेगा
और रिएक्ट उस पे करता है।
और अब इसमें एक बात ये भी है कि जो रोड रेज इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब आप गुस्सा करते तब थोड़ा आपको अच्छा लगता है, शाउट करता है, टेम्पररी फेज है वास्तव में, लेकिन वो टेम्पररी फेज में जो उसे थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो इसके कारण ये नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। अगर तुरंत हार्मफुल इफेक्ट होती ना कि भी आप गुस्सा करो तुरंत आपको हार्ट में पेन होने लगा, तुरंत सर दर्द हो गया, तो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता। तो ये दोनों रीजन है, उसके कारण रोड रेज इतना बढ़ रहा है।
और इसका अगर डॉक्टर साहब हम ग्लोबल रूप देखें, ये तो एक रोड रेज की बात हुई, तो आपस में व्यवहारों में कुछ फैमिलीज के बीच में देखा जाए, समाजों के बीच में देखा जाए, या नेशंस के बीच में भी देखा जाए, तो मैं समझता हूँ सारी परेशानियों का जो एक कारण है काफी हद तक क्रोधी है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को एक ईगो पे लेकर चलना, छोटी छोटी परेशानियों को ऐसे लेकर चलना उनको एक क्रोध का रूप दे देता है, और क्रोध जो है वो वॉर का रूप ले लेती है एक समाजों के बीच में मनुष्य के रूप में। डॉक्टर साहब अभी हमारा समय काफी हुआ है, आपने क्रोध के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सुंदर रूप से प्रकाश डाला, अभी हमें इजाजत लेनी होगी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर गिरीश पटेल से क्रोध के कारण के बारे में, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि क्रोध के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या इफेक्ट्स, कितने घातक इफेक्ट्स वो हमारे शरीर पर और मानसिक रूप से हमारे ऊपर कर सकता है। तो जब हम कारण जान लेते हैं तो उसका निवारण जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं समझता हूं कि आपको यह एपिसोड से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हम अपने अगले एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे क्रोध के निवारण के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।